बाहर वाला तुम समझ नहीं सकता।
शिव भगवान वाच क्या होता है? वो तो कहेंगे शिव जी शायद इनका ही नाम है, इसलिए नया कोई यहाँ बैठ नहीं सकता है। तो कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर के बैठे तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। ये पाठशाला ऐसी है, नए कोई की बुद्धि में कुछ भी बैठ नहीं सकता, इसलिए नए को अलाउ नहीं किया जाता है। और सत्संगों में तो कोई भी बैठ सकता है, क्योंकि वो है भक्ति की साथ है, ज्ञान की वहां कोई बात नहीं होती। बात सब भिखारी करा दी जाकर के बैठते हैं, यहाँ तो कोई ऐसा बैठ न सके। इस सत्संग में कोई भिखारी नहीं आकर के बैठता है, क्योंकि तो बाबा तो मुझे बताते हैं कि कोई भिखारी भी आकर के बैठ जाते हैं, देखते हैं, देखें बाबा को पता चलता है कि नहीं, तो बैठते तो हैं आगे, ये मतलब नहीं है। बैठ न सके का मतलब अगर बैठेगा भी तो एक दिन वो जाएगा, बैठा नहीं रह सकेगा, उसको और ज्यादा घाटा है, घाटा पड़ेगा। तो अंत तक यहाँ कोई बैठ न सके, आप भी बैठ न सके, सारी की तो बात समझ में आई। शराबी यहाँ सत्संग में आती क्यों बैठेगा? कभी ऐसा देखा बाबा के सत्संग में कोई शराबी आके बैठ सके? अच्छा यहाँ की बात छोड़ो, यहाँ तो बाबा बोलते हैं मधुबन के लिए, क्या सेंटर्स में कभी कोई शराबी आकर के बैठते हैं? सेंटर्स में भी नहीं देखे जाते, भक्ति मार्ग का लगता बात अलग है। यहाँ ऐसा कोई बैठ नहीं सकता शराबी, उसको शराब होती है, भक्ति मार्ग का नशा होता है वो तो होता है, ज्ञान मार्ग में उसे कहते हैं नारायणी नशा, वो कोई शराब नहीं है, वो तो श्रेष्ठ नशा है। और शराबी कहा जाता है देविचारी को, इंद्रियों से जो देविचार करता है उस देविचार का भी नशा करता है। अब वो इंद्रियां चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां, दोनों प्रकार की इंद्रियां अगर व्यभिचारी बनती है तो शराब का नशा कहा जाता है। ऐसा कोई यहाँ बैठ नहीं सकता, मान लो अगर बैठता भी है तो एक दिन उसको उखड़ जाना पड़ेगा। तुमको कोई भी ऐसी अशुद्धि दिखानी नहीं है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बन गए। एक अशुद्धि दिखाई जाती है तो स्थूल पेट खराब होता है, क्योंकि स्थूल चीजों से स्थूल पेट के ऊपर असर पड़ेगा। और यहाँ आत्मा का मन बुद्धि रूपी आत्मा का भोजन है दृष्टि और वृत्ति, अशुद्ध दृष्टि और अशुद्ध संकल्प अगर आत्मा ग्रहण करती है तो उसका असर जरूर पड़ेगा। बुद्ध रूपी पेट खराब जरूर होगा, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह है भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई। है तो पढ़ाई का प्रतिफल यहाँ नहीं मिल रहा है, मिलना है भविष्य नई दुनिया में। सिवाय बाप के और कोई पढ़ाई नहीं सकता। मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं वो इस पुरानी दुनिया के लिए पढ़ते हैं, और तुम सब कुछ भविष्य के लिए पढ़ रहे हो। जो कुछ भी करते हो नई दुनिया के लिए करते हो, ये है 21 जन्मों के लिए पढ़ाई। नहीं किस पढ़ाई का प्रतिफल इसी जन्म में ले लेना है। इस जन्म में तो हम सब सेवाधारी हैं, पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं और उसकी प्रारब्ध भविष्य की जन्मों में भोगते हैं। अगर कोई तथा का किसी ब्राह्मण ये समझे बैठे हो कि बाबा ने हमको पढ़ाई पढ़ाई, साकार बाबा से हमने जो पढ़ाई पढ़ी उसका अब हमको रिजल्ट मिल गया, हमें प्रारब्ध मिल गई, महल मानिया अटारियां अच्छे अच्छे म्यूजियम मिल गए और ये हमारा 21वां जन्म शुरू हो गया, तो ऐसा समझना उनकी भूल है। क्योंकि 21वां जन्म तो डायरेक्ट बाप से प्राप्ति करने का जन्म है और उससे जाती सुख तो और किसी जन्म में हो ही नहीं सकता। तन का भी सुख, मन का भी सुख और धन का भी सुख इस मृत्यु लोग के लिए नहीं पढ़ते। मृत्यु लोग के भी दो अर्थ, एक तो सामान्य मृत्यु जो होती है, दैहिक मृत्यु, उस हिसाब से मृत्यु लोग, और दूसरा ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी देहद का मृत्यु लोग और अमर लोग भी। ज्ञान में जो नित्य बुद्धि बनते हैं, जैसे कि जीवन धारण किया जीवित हैं, और अनित्य बुद्धि बने तो मृत्यु हो गई। तो ऐसे अनित्य बुद्धि बनने वाली मृत्यु 21वें जन्म में नहीं होगी ब्राह्मणों की। अमरनाथ के बच्चे सब अमर होंगे। तो तुम इस मृत्यु लोग के लिए नहीं पढ़ते, तुम बच्चों के लिए भविष्य का किसको पता ही नहीं। तुम्हें मुख्य बात है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र जरूर बनना। सत्य की स्थापना तो होनी ही, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और शिव बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे वो ही ऊंची पद पाएंगे। पहले पहले फॉलो इतने नहीं किया। इन सब ने सबसे पहले फॉलो इसने किया, किसने? ब्रह्मा ने। मैंने किसको फॉलो किया? पहले पहले फॉलो इसने किया। इसने जब कहते हैं तो बाबा ने किसकी तरफ इशारा? ब्रह्मा की तरफ। तो किस उसने किसको फॉलो किया? फॉलो दो तरह से करना होता है। एक तो फॉलो करना होता है आज्ञा को, जो डायरेक्शन मिले उससे फॉलो करना, और दूसरा फॉलो करना होता है कर्मों में। पहले पहले इसने फॉलो किया तो किसको फॉलो किया? यज्ञ के आदमी जो व्यक्तित्व हुआ, जिस व्यक्तित्व से ब्रह्मा को भी ज्ञान का पहला पहला डोज मिला, साक्षात्कारों का रहस्य मिला, उसके थ्रू शिव बाप के डायरेक्शन को फॉलो किया। फिर इनको देख फॉलो करना। देखना किस चीज को होता है? वाचा को देखना होता है या कर्मों को? कर्मों को देखना होता है। तो इससे इशारा मिल गया कि आज का जो व्यक्तित्व था पार्टधारी प्रजापति का, जिसके डायरेक्शन को ब्रह्मा ने फॉलो किया, वो कर्म करके दिखाने के निमित्त नहीं था, कर्म करके दिखाने के निमित्त ब्रह्मा को बनाया गया। इसलिए अगस्त वाणी में बोला है, तुम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है कर्मों में, परंतु बाप मेरी मानो, माना डायरेक्शन शिव बाबा के फॉलो करने। क्या ब्रह्मा के कने में शिव बाबा नहीं था? ब्रह्मा के कने में शिव बाबा था, लेकिन वो कर्णहार का पार्ट था। बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात पर बाबा का अटेंशन नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कभी यह अटेंशन नहीं दिया कि बच्चे मेरी बात को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं कर्म करके, अच्छे कर्म करके दिखाऊं तो ये बच्चे फॉलो करते, तो वो करणहार का पार्ट हुआ। फिर करणहार के बाद दूसरी बात करावनहार, इसलिए जैन में भी कहते हैं करण करावनहार, करावनहार शब्द बाद में। तो ब्रह्मा का पार्ट जो करणहार का पार्ट था, मृदुल पार्ट था, वो पार्ट जब पूरा होता है तो बाद में करावनहार का पार्ट हुआ। तो ये यहाँ इशारा दिया कि इनको देख फॉलो करना है, किसको? बच्चों को। बच्चों को इनको देख करके फॉलो करना है का मतलब ये है कि ये जो कर्म करें उन कर्मों को देखकर बच्चों को भी वैसे ही कर्म करने। इसलिए वाणी में बोल दिया, माँ को फॉलो करो लेकिन बात मेरी मानो। तो दो बातें हो गई, बात मेरी मानो। अब ब्रह्मा के कन में तो शिव बाबा भी बैठा हुआ है, क्या बात उसकी नहीं मानो? ब्रह्मा के कन द्वारा जो पाठ था डायरेक्शन देने का, वो मृदुल पाठ होने के कारण कभी कभी लूज भी होते थे। जैसे बाबा मुरली में तो बोलते थे शादी बर्बादी, या विनाश होना है मकान नहीं बनाना है, किराए पर चलाते रहो, या प्रॉपर्टी खरीद नहीं करना है, डायरेक्शन दिया मुरली ने। लेकिन बाबा का कोमल स्वभाव देकर के बच्चे बाबा से डायरेक्ट जाकर के पूछते थे मुरली के अलावा, और बाबा जब बच्चों की परेशानी सुनते थे तो कोमल हृदय होने के कारण डायरेक्शन को बदल लेते। अच्छा बच्चे शादी करके दिखाओ, बाबा तो चाहते हैं कोई बच्चा ऐसा निकले जो शादी कर दिखावे और पवित्र दिखावे। तो शादी बर्बादी वाला डायरेक्शन नाकाम हो गया। मकान बनाने के लिए भी बाबा बहुत परेशानी है, ये कठिनाई है, वो कठिनाई है, बड़ा परिवार है, बाबा नहीं सहन कर सकते बच्चे की परेशानी। तो ब्रह्मा उनको डायरेक्शन देते, अच्छा बच्चे मकान बना लो, एक कमरा गीता पाठ का लगे छोड़ देना। तो जब तक मकान बनाते तब तक तो लक्ष्य रहता है कि हाँ ये कमरा गीता पाठ का लगे छोड़ना है। फिर बाद में जब अड़चने आती तो फिर वो गीता पाठ का लगे छोड़ दी जाती, क्योंकि परीक्षाएं तो होनी है। बहने जाकर के गीता पाठशाला में थोड़ी बचिया नुकसी करके तो उनका दिल उभर जाता, गीता पाठशाला अपनी जगह रखी रह जाती। ऐसे ही प्रॉपर्टी नहीं खरीद करना, जब विनाश होना है तो प्रॉपर्टी बनाने की क्या दरकार? जो बाबा की अविनाश की बैंक है, बाबा के बच्चे हैं, तो अपना भाग्य बनाएंगे या प्रॉपर्टी इकट्ठी करेंगे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि बाबा तो लूज होते थे लेकिन खुद कर्मों में स्थित थे। जैसा डायरेक्शन वैसे ही बाबा ने कर्म करके दिखाए। तो इस हिसाब से ब्रह्मा के द्वारा करणहार का पार्ट तो निश्चित साबित हो जाता है, लेकिन इतने से ही काम पूरा होने वाला नहीं। कोमलता से काम पूरा नहीं होता, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, बच्चे अपनी मनमानी चाल चलते रहे, बाबा अपनी जगह कर्मों में स्थित रहे। पर जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो शिव बाप ने सख्त स्वरूप पकड़ा, स्थित रूप है त्रिमूर्ति में, ब्रह्मा को लूज बैठक में दिखाया गया। और शंकर को स्थित बैठक में दिखाया गया। बैठक कोई स्थूल बात नहीं, माना स्वभाव संस्कार कैसे चित्रकार चित्रित करे, तो स्वभाव संस्कार ये दिखाया गया है कि उचित था और ये स्थितनेस जरूरी है बच्चों को परिवर्तन करने के लिए। ब्रह्मा ने तो फॉलो किया डायरेक्शन दी, बहुत बच्चों ने भी फॉलो किया, सरेंडर हो गए, बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, सबको तो नहीं छोड़ना है, यह तो पहले बच्ची बननी थी, माने जिनका पार्ट था उन्होंने छोड़ छाड़ करके आ गए, लेकिन सबका ऐसा पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पहले बच्ची बननी थी इसलिए छोड़ दिया। कितनी पक्की बच्ची थी और कितने वर्ष तुम बच्ची में रहे, कहा ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने कहा कितने वर्ष तुम बच्ची में रहे, कोई मित्र संबंधी के कनेक्शन नहीं। कराची में ऐसा हुआ, कोई धंधा धोरी नहीं, शादी मुरादी नहीं, अब तो बच्चों को शादी मुरादी पर भी जाना पड़ता है, पहले तो बच्ची बनी थी, इनको पकना था, कल पहले भी ऐसे हुआ था, पहले किया भी शब्द यहाँ क्यों लगाया, कलब पहले भी ऐसे हुआ था, इसका मतलब कलब के बाद में भी ऐसे ही होता है और भट्टी के आदि में भी ऐसे ही हुआ था, यज्ञ के आदि में तो अंत में भी ऐसे ही हुआ, जो आज में हुआ तो सब अंत में होता है, पहले पहले तो सब चले आई, पिछाड़ी को मालूम पड़ता है कि कितने बच्चे कच्चे निकल पड़े, शुरू में बच्चे आज भी ले आए थे, उनकी तकदीर में नहीं था तो कितने चले गए, ये भी बंदर था ना, ये बट्टी लगाने की किसी की ताकत थी, किसकी ताकत थी, ब्रह्मा की ताकत थी, शिव बाबा की ताकत थी, कोई मनुष्य तो ये काम कर ही नहीं सकता, कितनी कायदे और युक्ति से बच्ची बनी, मनुष्य तो उस समय देखो क्या बोलते थे, बात मत पूछो, वो तो हुआ ड्रामा, जो कुछ देखा तो फिर भी होगा, माना 300-400 कन्याएं माताएं संगठित होकर के एक के डायरेक्शन पर चले, ऐसा संगठन तो कभी किसी ने हिस्ट्री में देखा नहीं, और वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड में 300-400 कन्याएं किसी वृद्ध मनुष्य के पीछे भाग खड़ी हो, थोड़ा बात मत पूछो, वो तो हुआ ड्रामा, जो कुछ देखा तो फिर भी होगा, माना जो आज में छोटे रूप में हुआ है वो अंत में बड़े रूप में ब्राड ड्रामा भी होगा, जिसका शास्त्रों में गायन होता है, शास्त्रों में आज का गायन नहीं है, शास्त्रों में गायन किस समय का है, संपूर्ण स्टेज का गायन शास्त्रों में है, 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा रिपीट होता है, ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो, ड्रामा के चैतन्य एक्टर हो तुम, जानते हो ये शरीर धारण कर हम पार्ट बजाने आए हैं, क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को तो जानना चाहिए, इस ड्रामा का क्रिएटर कौन है, क्या ड्रामा क्रिएट किया जाता है, ड्रामा अनादि है या क्रिएट किया जाता है, आत्माएं तो अनादि हैं, जो आत्माएं अनादि हैं आत्माओं को क्रिएट तो नहीं किया जाता, फिर क्रिएटिव शब्द कहां से आ गया, क्रिएटर कोई शिव नहीं है, क्रिएटर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे पार्टधारी हैं, वो अगर पार्ट ना बजावे तो ड्रामा नहीं बन सकता है। अनादि ड्रामा हूबहू रिपीट भी होता है, लेकिन कर्म तो फिर भी बच्चों को करने पड़ते हैं। तो सबसे जास्ती मुरली ने एक में बोला, सबसे जास्ती ड्रामा क्रिएट करता है ये व्यास, जास्ती ड्रामाबाजी करने वाला है व्यास। इसका मतलब व्यास तो नंबर वार हुए, कोई एक व्यास नहीं हुआ। वे माना विशेष आत्मा ने बैठना, यानी खास बैठ करके जो मनसा के ऐसे संकल्प चलाए जिससे सृष्टि की रचना होती। जैसे कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि की रचना हुई। तो ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि की रचना हुई, और ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जिस तन में भी प्रवेश करके परमात्मा वाणी चलाता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। तो जरूर कोई स्वच्छ आत्मा भी होगी जिसमें परमात्मा सिर्फ पहले पहले प्रवेश करता है, वो स्वच्छ क्रिएटर हुआ, पहला पहला ड्रामाबाज। व्यास नाम की भी गद्दियां चली, जैसे धर्म स्थापक आकर के पहले पहले बोलता है फिर बाद वाले उसको लिखते हैं, ऐसे ही व्यास नाम के भी कई हुए हैं। उनमें जो पहला हुआ उसने शास्त्रों का उच्चारण किया भक्ति मार्ग में द्वापर युग से, फिर उसके बाद और जो दूसरे दूसरे आए शिष्य वो नंबर दो तीन चार के व्यास हुए। तो बताया क्रिएटर डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को जानना चाहिए। इसका मतलब कोई ऐसा भी एक्टर है जो एक्टर्स के बीच में मुख्य पार्ट बजाता है, उसको क्या कहते हैं? मुख्य एक्टर को क्या कहते हैं? हीरो कहते हैं। हीरोइन भी मुख्य नहीं, वो भी उसके बाद का नंबर, हीरो पार्टधारी। तो हीरो पार्टधारी क्या शिव ज्योतिबिंदु बनता है? शिव ज्योतिबिंदु को हीरो पार्टधारी कहेंगे? क्यों क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ऑलराउंड पार्टधारी नहीं। जो हीरो पार्टधारी होता है वो कोई बाई प्लाट में अपना पार्ट बजा करके वापस नहीं जाता, वो तो आज से लेकर के अंत तक कोई ऐसा सीन नहीं होता ड्रामा का। ड्रामा के तीन चार सीन होते हैं कोई भी नाटक के, तो हर सीन में उसकी उपस्थिति होती है। तो हीरो एक्टर शिव ज्योतिबिंदु को नहीं कहेंगे। जरूर 500-600 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं उनमें ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है जो आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाती है, जो हीरो पार्टधारी कही जाती है। तो वो मुख्य एक्टर भी हुआ और डायरेक्टर, डायरेक्टर तो शिव बाबा ही है, लेकिन शिव बाबा को भी डायरेक्शन देने के लिए मुख तो चाहिए ना। तो जो मुख सबसे पहले लेता है डायरेक्शन देने के लिए, ब्रह्मा का मुख वो भी बाद में लिया। जो हीरो पार्टधारी होता है वो बीच में वापस नहीं जा सकता, वो तो मुकर्रर रथ होना चाहिए। इसलिए मुरलियों में दो प्रकार के रथों की बात आई, एक मुकर्रर रथ और दूसरा टेम्परेरी रथ। तो टेम्परेरी रथ और हैं, लेकिन मुकर्रर रथ वो कहा जाएगा जो आज से हो और आज से शुरू हो करके अंत तक, जब तक शक्ति नई शक्ति की रचना का कार्य पूरा न हो तब तक वो रथ अपना पार्ट समाप्त नहीं कर सकता। तो यज्ञ के आदि में जो आत्मा निमित्त बनती है वो अंत में भी निमित्त बनती है मुकर्रर रथ के लिए। तो डायरेक्टर भी उसी के थ्रू कहा गया। क्रिएटर को, डायरेक्टर को और मुख्य एक्टर को जानना चाहिए। तुम्हारे सिवाय किसको इस ज्ञान का पता नहीं है कि क्रिएटर कौन है, मुख्य एक्टर कौन है और इस ड्रामा का डायरेक्टर? कौन है? तुम बच्चे रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को अच्छी रीति से जानते हो कि फर्स्ट क्लास रचयिता कौन है और फर्स्ट क्लास उसकी रचना कौन है? कौन है रचयिता और कौन है रचना? रचयिता किसे कहेंगे? रचयिता माना रचने वाला, क्रिएटर, क्रिएट करने वाला। क्या क्रिएट करता है? रचना को। कौन सी रचना? स्वर्ग की रचना। रचना किसका काम है? स्वर्ग रचा जाता है, आत्माएं नहीं रची जाती। आत्माएं तो अनादि है ही, तो स्वर्ग की रचना करना, नई दुनिया की रचना करना, यह है बाप का काम। और बाप एक नहीं, देह के बाप भी दो हैं, एक आत्माओं का बाप शिव बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। एक दूसरे के बिना एक दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे आत्मा शरीर के बगैर कुछ कर नहीं सकती और शरीर आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे ही वो फर्स्ट नंबर जन्मान के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है प्रजापिता, उसके बगैर शिव बाबा का कोई अस्तित्व नहीं, जिसको हम कहते हैं शिव ज्योति बिंदु। और शिव ज्योति बिंदु के बगैर उसको प्रजापिता के रूप में संसार में कोई पहचान नहीं सकता। बल संसार में दूसरे धर्म के लोग भी आदम और एडम के रूप में उसे मानते हैं, लेकिन और जन्मों में उसकी पहचान नहीं हो सकती। ऐसे तो नहीं कि वो आत्मा रहती नहीं है सच्ची रूपी रंगमंच पर, रहती तो है लेकिन उस महत्व से कोई उसे पहचान नहीं सकता। तो जैसे उस मुख्य एक्टर को कोई नहीं पहचान सकता, हीरो पार्टधारी को कोई नहीं पहचान सकता, वैसे ही और जन्मों में शिव ज्योति बिंदु परमात्मा पार्टधारी को भी कोई पहचान नहीं सकता। ये जब तक दोनों इकट्ठे न हो, दोनों का मेल न हो, दोनों की प्रवृत्ति न बने, तब तक याद भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। एक्यूरेट याद कब कहें? जब आत्मा और शरीर दोनों की प्रवृत्ति हो। कोई कहे कि हम ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करते हैं, अब बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब एक रहती, कौन से बिंदु को याद करते हैं? कैसे पता चले? साकार में आकर के वाणी चलाए, ज्ञान सुनाए, कुछ कैसुलरिटी नजर आए, तभी तो समझ में व्यक्ति बनता है। ऐसे नहीं कि वो कोई पर्सनालिटी ही नहीं है, कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। नहीं, व्यक्तित्व है, वो भी एक ऊंची से ऊंची हस्ती है इस मनुष्य सचिव की रंगमंच की, जो सिर्फ संग लोग में ही प्रत्यक्ष होता है। तो बताया, तुम्हारे सिवाय इस ज्ञान का किसी को पता नहीं है कि क्रिएटर डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? बच्चे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को अच्छी रीत से जान गए। फर्स्ट क्लास रचयिता हुआ शिव बाबा, शिव माने शिव ज्योति बिंदु और बाबा माना ग्रैंड फादर। शिव ज्योति बिंदु अगर सिर्फ बिंदु रूप में है तो वो आत्माओं का पिता है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब वो शरीर में आता है। वो सिर्फ हमारी आत्माओं का पिता है और हम आपस में भाई भाई, हम भाई बहन भी नहीं। भाई बहन भी कब बनते हैं? जब वो शरीर में प्रवेश करता है। तो ऐसे ही दूसरे संबंध भी तब बनते हैं जब वो शिव ज्योति बिंदु शरीर में प्रवेश करता है। उसमें ग्रैंड फादर का भी संबंध आता है। ग्रैंड फादर वो हुआ रचयिता। अब रचना कौन है फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास रचना एक तो होती है पहली रचना और दूसरी फिर होती है फर्स्ट क्लास रचना। पहली रचना कौन? ब्रह्मा जी। कौन सा? एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा, माना प्रजापिता के साथ जिस ब्रह्मा का गायन है। शब्द ही जाहिर करता है कि माता और पिता दोनों साथ साथ, माना प्रजापिता ब्रह्मा। और सिर्फ ब्रह्मा कहा जाए तो वो अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा यज्ञ के आदि में भी था और जो आदि में भी था वो अंत में भी जरूर होगा बच्चों को वर्षा देने के लिए। तो वो आदि ब्रह्मा जिसको आदि देवी या जगत अम्बा कहा जाता है, वो तो है फर्स्ट रचना, पहली पहली रचना, जिसके लिए बाबा ने बोला है कि पहली पहली रचना का नंबर के डायरेक्शन में 60 पेज पर 28/88 का प्रातः क्लास पहले पेज का मध्यान्ह फर्स्ट रचना तो हुई जगदम्बा, क्योंकि पुरुष की स्त्री ही पहली रचना होती है, लेकिन पहली रचना तो है लेकिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं, पावरफुल रचना नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप का जो बच्चा होता है पहला पहला वो ही राजा ही का हकदार बनता है, क्योंकि पत्नी की सारी पावर किस में जाती है, पहले पहले बच्चे में जाती है, पति और पत्नी की जितनी भी प्योरिटी की पावर है वो पहला बच्चा खींच लेता है, बाद वाले बच्चे में उतनी पावर नहीं रहती प्योरिटी, इसलिए भारतीय परंपरा में या दूसरी परंपराओं में भी जो बड़ा बच्चा होता है उसको राजा ही का हकदार बनाया जाता है। तो यज्ञ के आज में भी जो बाप ने प्रजापिता ने प्रवेश किया तो वो हुआ रचयिता क्रिएटर, सबसे पहले किसको क्रिएट किया, माँ को क्रिएट किया जगदम्बा, और फिर उसके बाद उन दोनों से उत्पत्ति पहली रचना कौन सी हुई, कृष्ण बच्चे की मन ब्रह्मा दादा लेखराज के थ्रू परमात्मा शिव ने जो सूतुम पीरज में पार्ट बजाया वो है मृदुल से मृदुल पार्ट, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट, तो वो हो गई स्पष्ट रचना पावरफुल रचना कृष्ण वाली आत्मा, जो कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वास्तव में हीरोइन का पार्ट बजाने वाली है। ये सृष्टि रूपी रंगमंच के दो मुख्य एक्टर्स हैं राम और कृष्ण, तो बताया कि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत अच्छी रीति जानते हो, रचयिता का आदि मध्य अंत क्या होता है और रचना का आदि मध्य अंत क्या होता है, रचयिता का आदि मध्य अंत वो भी अच्छी रीति समझ में आ गया, रचयिता क्रिएटर अर्थात प्रजापिता यज्ञ के आदि में क्या बनता है, नारायण बनता है, मध्य में क्या बनता है नहीं पता, अच्छा रचना का आदि मध्यंत बताओ, फर्स्ट रचना सृष्टि के आदि में क्या होती कृष्ण, और मध्य में, मध्य में राजा विक्रमादित्य, और अंत में दादा लेखराज ब्रह्म, तो ये तो जो अव्वल नंबर रचना है कृष्ण उसका आदि मध्य अंत हुआ, तो रचयिता का आदि मध्य अंत भी पता होना चाहिए, ऐसे तो नहीं कि रचना के आदि मध्य अंत का पता हो जाए और रचयिता का आदि मध्य अंत का पता ही ना हो, तो रचयिता आदि में नारायण और मध्य में, मध्य में क्योंकि द्वापर युग से जो भी राजाएं होते हैं वो विकारी राजाएं होते हैं और विकारी राजाएं अपनी अकल से कार्य नहीं करते, उनको मंत्री रखना होता है और सत्युपुत्रेता में मंत्री की परंपरा होती नहीं, सत्युपुत्रेता में जो बाप होता है वही मंत्री के रूप में होता है, देखभाल करता शुरुआत में सलाहकार होता है, बाकी कोई अलग से कोई मंत्री नहीं होता है। तो द्वापर के आज में भी सत्व प्रधान स्टेज होती है, इसलिए वहां भी ये परंपरा थोड़ी थोड़ी चलती है। यानी बाप ही राजा विक्रमादित्य को ये रास्ता बताता गुरु बनकर। तो क्योंकि राजा विक्रमादित्य मंदिर बनाता है तो मंदिर बनाने की सलाह कोई तो देगा, राजा विक्रमादित्य में तो ये इतनी अकल नहीं है, वो अपनी बुद्धि से मंदिर बनाए, उसके लिए गुरु तो जरूर चाहिए। तो द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक वही क्रम चलता है 63 जन्मों में जो 21 जन्मों में चलता है। यानी 21 जन्मों में सतयुग और त्रेता में जिस प्रकार का जो जो अप एंड डाउन में आत्मा आती है वही क्रम 63 जन्मों में भी चलता है। सतयुग के आदि में जो शेष पदधारी होगा वो द्वापर के आदि में भी शेष पद पाने वाला बनेगा, और त्रेता के आदि में जो शेष पद पाने वाला होगा वो कलयुग के आदि में भी शेष पद पाने वाला होगा। तो ये हिसाब है 21 जन्मों के आधार पर, इसलिए अगतवाणी बोला कि 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। मध्य में रचयिता हुआ विक्रमादित्य का बाप या गुरु, और अंत में फिर वही प्रजापिता। तो तुम अच्छी रीति जानते हो, कोई तो फिर रचयिता को भी भूल जाते हैं, रचना को भूल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो रचना ही है, लेकिन रचयिता बाप को भी भूल जाए। बेहद का बाप जिसको भक्ति मार्ग में इतना याद किया है, वो अब आया हुआ है। बेहद का बाप जिसको भक्ति मार्ग में इतना याद किया, कितना याद किया, इतना माना कितना। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो निराकार को न मानता हो, निराकार गॉड को तो सब मानते हैं, उसका निराकारी रूप भारत में भी माना जाता है शिवलिंग। जरूर निराकार पार्ट धारी रहा होगा, निराकार का मतलब सिर्फ बिंदु नहीं होता है, निराकार का मतलब है निराकारी स्थिति, निराकारी माना निसंकल्प स्टेज। ऐसे नहीं कि शरीर ही नहीं, शरीर ही नहीं हो फिर निराकारी और साकारी और आकारी ये बात लागू कैसे होगी। जैसे हम बच्चों को अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन दिया कि साकारी निराकारी और आकारी तीन स्टेज की प्रैक्टिस करनी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी। तो साकारी का मतलब तो सब जानते हैं कि देहभानी की स्टेज है साकारी स्टेज, और मनन चिंतन मंथन की स्टेज है आकारी स्टेज जिसमें ये देह भूल जाए, और निसंकल्प स्टेज बिल्कुल बिंदु स्वरूप, मैं बिंदु आत्मा, मेरा बाप बिंदु आत्मा और दूसरा कुछ भी बिंदु की सिवाय कुछ याद ना आए, वो है निसंकल्पी स्टेज निराकारी स्टेज। तो ऐसी निराकारी स्टेज में रहने वाले रचयिता बाप को भी भूल जाते हैं जिसको भक्ति मार्ग में 63 जन्म याद किए हैं। यज्ञ का आदि और यज्ञ का अंत, तब से लेकर के अंत तक ज्योति बिंदु को मानने वाले तो जरूर रहेंगे। तो जो बड़ा ड्रामा है उसमें भी द्वापर युग से जब भक्ति मार्ग शुरू होता है
तो भक्ति मार्ग के शुरू से ही लेकर के कलयुग के अंत तक दुनिया में निराकार को मानने वाले जरूर रहते हैं। साकार की मान्यता तो भक्ति मार्ग में बाद में शुरू हुई, पहले तो शिवलिंग की स्थापना होती है। तो जो शिवलिंग है उसमें ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ निराकार ही निराकार है, बिंदु ही बिंदु है, नहीं। शिवलिंग का अर्थ ही है कि उसमें नाक आंख कान हाथ पांव वगैरह कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई गई। तो चित्रकार निराकार चीज को कैसे सूचित करे? ये चित्रकार चित्रकारी जो करता है कभी भी एक प्रकार का चित्रकार होता है, अपनी भावनाओं को चित्रित करता है वाचा के द्वारा। तो जो कवियों की कविता ने निराकारी स्टेज दिखाई है वो शिवलिंग दिखाया है। उसमें बिंदु है शिव ज्योति बिंदु की यादगार, सोमनाथ के मंदिर में जो हीरा दिखाया गया है शिवलिंग में वो है शिव ज्योति बिंदु की यादगार। और वो हीरा जिसमें बैठा हुआ है लिंग में वो है निराकारी स्टेज की यादगार। माना कि कर्म करते हुए भी जैसे कर्म इंद्रियों का भान है कि नहीं, बुद्धि एकदम उपराम कर्म इंद्रियों के ऊपर उन कर्मों का लेप छेप नहीं कर सकता, ऐसी स्टेज दिखाने के लिए ऐसी स्टेज को साबित करने के लिए वो लिंग रूप दिखाया है। जिस लिंग रूप को द्वापर के आज से ही लेकर के और अब तक भी गांव गांव में शहर शहर में उसको याद करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए बताया कि जिस बाप को इतना याद किया वो अब आया है, क्या लिंग आया है? लिंग लुढ़कता पुरकता चला आया क्या? जैसे टेलीग्राम की बटिया होती हैं, नदी में ऊपर से बहती चली आती है और समुद्र में जाकर के वो पत्थर आपस में टकराते टकराते जाके गिरते हैं, तो गोल गोल टेलीग्राम की बटिया बन जाती है। ऐसे ही कोई बड़े पत्थर होते हैं उनको शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगता है। क्या कोई शिव बाप जो आया है जिसको इतना याद किया वो अब आया है, क्या शिवलिंग आया है? क्या कोई जड़लिंग है? कौन आया है? भक्ति मार्ग में तो लिंग को याद किया दो युगों तक 63 जन्म तक, तो लिंग थोड़े ही आया है। लिंग माना वो चैतन्य चिन्ह प्रैक्टिकल वो स्वरूप लिंग का जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है, जिसके लिए बाबा ने बोला मेरा तो इतना पार्ट है जितना पार्ट किसी का हो नहीं सकता। अब जो 84 जन्म ही नहीं लेता उसका पार्ट कहां से हो गया? तो संगम युग की बात है कि संगम युग में वो बाप और शिव ज्योति बिंदु आकर के इतना पार्ट बजाता है कि जितना पार्ट और जितना श्रेष्ठ पार्ट दुनिया में और कोई बजा ही नहीं सकता, जिसकी यादगार मंदिर में दिखाई जाती है। शिवलिंग की पूजा होती है, पूजा का आधार प्योरिटी ही होता है। प्योरिटी का पता कैसे चले कि इम्प्योर स्टेज क्या है और प्योर स्टेज क्या है, निर्लेप स्टेज क्या है और लेप छेप लगने वाली स्टेज क्या है? कीचड़ में कोई चीज डाली जाए और निकाली जाए जैसे कमल, तब कहेंगे कि निर्लेप, कीचड़ का लेप छेप नहीं लगा और चीज का संग ही नहीं हुआ कीचड़ के, और उसे कह दिया जाए कि ये निर्लेप है, तो बिना प्रैक्टिकल प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार होंगे? इसी तरह परमात्मा शिव को ये कह दिया जाए सिर्फ कि वो एवर प्योर है और उसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ और प्रमाण न दिया जाए तो कोई मानेगा? बुद्धिमान व्यक्ति कोई मानेगा कि परमात्मा शिव एवर प्योर है? एक सिर्फ कह देना होता है एवर प्योर, और एक प्रयोगात्मक जीवन में उसको खड़ा उतार करके संसार के सामने साबित कर देना, ये इस तरीके से इवर प्योर है। वो साधु संन्यासी से सिर्फ कह देते हमारी आत्मा निर्लिप है। अगर निर्लिप होती तो तुम गर्भस्थ की कीचड़ को छोड़ करके भागते क्यों? फिर तो तुम्हें भागने की सरकार नहीं। तो सबसे बड़ा गृहस्थी जीवन है परमात्मा शिव का। जो ऐसा परमात्मा पार्ट बजाता है गृहस्थी जीवन में रह करके, वो हम बच्चों को राज्यों की शिक्षा देता है, भविष्य मार्ग की शिक्षा देता है, निवृत्ति मार्ग वाले हठ योगी भविष्य मार्ग का राजयोग नहीं सिखा सकते। इसलिए मुरली में बोला है कि जानते नहीं है कि बाप ने प्रवृत्ति में रहकर राजयोग सिखाया है, जिस राजयोग से विश्व की बाधता ही प्राप्त होती है। वो विश्व की बाधता ही नर से नारायण बनने वाला वो स्वरूप, उसको विश्व की बाधता ही कोई ब्रह्मा सरस्वती के थ्रू प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी थी, वो कोई प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, वही ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं जब कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती हैं, तब वो प्रवृत्ति होती है। तुम बताया कि जिसको इतना याद किया वो अब आया हुआ है, तो जो अब आया हुआ है ऐसे नहीं आकर के चला गया, याद किसको किया जाता है? अरे बड़े बड़े नेताएं हो जाते हैं उनको याद करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष हो जाते हैं उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? जरूर उन्होंने कोई बड़ा कार्य किया होगा तब तो याद करते हैं। तो परमात्मा जो है वो उसको तो सारी दुनिया याद करती है, तो जरूर परमात्मा ने तो सबसे जास्ती कोई बड़ा कार्य किया है। वो संसार में कोई कार्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा आकर के करता है। ऐसे नहीं कि दुनिया के महात्माओं और संत पुरुषों और बड़े बड़े धर्म पिताओं की तरह सिर्फ भाषणबाजी करके वापस चला जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ धर्म स्थापन करके चला जाता है, नहीं, धर्म स्थापना के साथ साथ वो नई दुनिया नया राज्य की स्थापना भी करके जाता है, और पुरानी दुनिया के असुरों का विनाश भी करके जाता है, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सका। स्थापना तो सबने की, घर घर में बाप बैठे हुए हैं नई सच्ची की स्थापना करने वाले। हद के बाप भी तो रचयिता है, वो भी रचना कर लेते हैं, लेकिन कोई बाप में ऐसी ताकत नहीं होती जो अपने बच्चे की हत्या कर सके, विनाश कर सके। ऐसा निर्मोही बाप कोई होता नहीं है। ये तो एक ही बाप है जो आकर के अपनी ही रचना का विनाश भी कर देता है, अगर वो रचना लायक नहीं, ना लायक है। इसलिए मुरली में बोला वो बच्चा बच्चा नहीं जो बाप के कंट्रोल में न हो, वो रचना रचना नहीं है जो रचयिता के कंट्रोल में न हो। इतना नष्ट हुआ बनना पड़े। तो बताया वो बाप आया है, ऐसे नहीं आकर के चला गया है और अब हम स्वर्ग की रचना करते रहेंगे। अगर हम स्वर्ग की रचना कर सकें तो फिर परमात्मा की सृष्टि पर आने की कोई दरकार नहीं है। जितना उनकी श्रीमत पर चलेंगे, बैठा तो ब्रह्मा की कान में है, फिर उनकी दूर क्यों कर दिया? उनकी इनकी क्यों नहीं कहा? जब ब्रह्मा के तन में प्रकृति के मध्य में बाजू में ही बैठा हुआ है सुप्रीम सोल, तो उनकी क्यों बोलता है? जितना उनकी श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, ऐसे क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो पाठ भविष्य में बजने वाला है। जैसे मैं ब्रह्मा के तन से बोल रहा था वो कोई परमात्मा पाठ नहीं था जो प्रैक्टिकल में स्वर की रचना करके दिखाई। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई को छोड़ना ये कोई अकलमंदी नहीं है, छोड़ना हो ही चाहिए। ये है ईश्वरीय पढ़ाई, जहां तक जीना है तो ऐसे बाप से पढ़ते रहना चाहिए। कैसे बाप से? जिसको भक्ति मार्ग में इतना याद किया, सबसे जाती भक्ति मार्ग में कौन से स्वरूप को याद किया? नारायण के रूप को, राम के रूप को, गणेश या हनुमान के रूप को नहीं, शिव के रूप को याद किया, शंकर के रूप को भी नहीं, शिव के रूप को। शिव का मतलब निराकारी से। तो जिसको इतना याद किया तो जहां तक जीना है तो ऐसे बाप से पढ़ते रहना चाहिए। कैसे बाप से? जो ऐसी निराकारी चेज को धारण करने वाला है, जिसको भक्ति मार्ग में इतना याद किया। बहुत हैं जो पढ़ाई को छोड़ माया से हराए बैठ जाते हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो खुद सेंटर खोल और खुद पढ़ते नहीं, दूसरों के लिए सेंटर खोल देते हैं लेकिन खुद पढ़ाई पढ़ते नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे। बाकी हाँ, बहुतों के कल्याण की आशीर्वाद भी मिल जाती है, उसमें भी कोई शक नहीं है। सेंटर खोल देते हैं, कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, औरों का कल्याण बल हो, हम पवित्र नहीं रह सकते, बाकी मदद कर सकते। तो यहाँ पढ़ाई कौन सी है? यहाँ तो पढ़ाई सारी पवित्रता की है। एवर प्योर बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? नंबर वन पवित्र बनेंगे ना, तो जितना हम मदद करेंगे प्रजा में तो साहूकार बनेंगे। कौन? सेंटर खोलने वाले क्या बनेंगे? राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? जिन्होंने सिर्फ सेंटर खोल करके दिया लेकिन पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, वो क्या बनेंगे? वो साहूकार तो बन सकते हैं, सेकेंड क्लास साहूकार प्रजा तो बन सकते हैं, लेकिन राजा नहीं बन सकते। हाँ, ये हो सकता है बीज बोने का एवजा तो मिलेगा, ये बाप जाने और दादा जाने किसने कितना बीज बोया है। यहाँ तो सब गुप्त होता है। अगर किसी ने बीज बोया है तो ये तो बाप जाने और दादा जाने। बाप कौन? बाप माना प्रजापिता, क्योंकि प्रजापिता माना शिव बाबा। प्रजापिता शब्द कहने से ही बुद्धि में आ जाना चाहिए कि प्रजापिता का अस्तित्व तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक उसमें शिव बाबा प्रवेश न करे। और दादा जाने, दादा माना बड़ा भाई। तो बच्चों को थोड़ी पता पड़ सकता है कि कौन प्रजा बनेगा और कौन राजा बनेगा। दूसरा भी तुम बच्चों को पढ़ाई का बहुत बहुत नशा रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए? बहुत बहुत। पढ़ाई में ऐसी कौन सी बात है जिसका हमको बहुत बहुत नशा रहना चाहिए कि हमको प्रैक्टिकल बाप पढ़ाए रहे हैं, बाप का प्रैक्टिकल रूप साकार रूप हमको पढ़ा रहा है। दुनिया तो सिर्फ बुद्धि से समझती है, एक संकल्प धारण करती है, एक भावना बनाती है कि हम भगवान बाप से पढ़ते हैं। एक भावना बनाना ये तो होता है भक्ति मार्ग में, और ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। तो तुमको बहुत नशा रहना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाकर भगवान और भगवती बनाए रहे। क्या पढ़ाने वाला भी कौन? स्वयं भगवान। और बनाते भी क्या है? भगवान और भगवती। ऐसे नहीं कि भगवान पढ़ाई पढ़ाई के चला जाए और फिर जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है वो बैठ करके भगवान भगवती बनाएंगे, ऐसे नहीं होता। भगवान ही खुद पढ़ाई पढ़ा करके हमको भगवान भगवती बनाता है। और दूसरे जो पढ़ाएंगे उनसे पढ़ने वाले, मनुष्य गुरुओं से पढ़ने वाले, वो नंबर वार देवताओं की लिस्ट में आ सकते हैं। वो भी 16 कला संपूर्ण देवता नहीं बन सकते। तो भगवान भगवती बनाए रही और 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी बनेगी। ऐसी पढ़ाई में तो एकदम लग जाना चाहिए। कैसी पढ़ाई? जो एवर हेल्दी बनाने वाली हो। एक होता है एवर हेल्दी शारीरिक रूप से और एक होता है एवर हेल्दी आत्मिक रूप से। हम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसमें बाहर की रीत से कितने भी विघ्न आए, बाधाएं आए, परिस्थितियां आए, परीक्षाएं आए, लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर कोई इफेक्ट न पड़े, मन बुद्धि एकदम प्रफुल्लित बनी रहे, तो उसको कहेंगे एवर हेल्दी। और जो एवर हेल्दी होगा उसका मन तो हेल्दी रहेगा तो एवर हैप्पी भी रहेगा, क्योंकि जहां स्वास्थ्य होता है वही सच्चा सुख है। और एवर वेल्दी, एक होता है फूल रीत के वेल्दी, तो इस फूल रीत के जो साहूकार हैं वो तो विनाश के पीरियड में सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि अकाल पड़ेगा तो नोटों की गड्डियां सड़कों के ऊपर तैरती रखी रहेंगी, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बाबा के यज्ञ में खाने के लिए खिचड़ी न मिले, चावल दाल न मिले, बाबा के यज्ञ में तो जरूर मिलेगा। अभी दुनिया भले 36 प्रकार के भोग लगाती रहे और खाती रहे कि ये समझे कि हमसे ज्यादा बड़ा आदमी कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन असली पता तब पड़ेगा कि जो दुनिया के बड़े लोग कौन है, जिनके पास ज्ञान धन होगा, ये ज्ञान की प्रॉपर्टी ही सच्चे रतन बन जाएगी, उसको ना वैल्यू का पता चलेगा कि साहूकार असली क्या चीज होती है। ऐसी पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। ऐसे भी नहीं 5-7 घंटे बैठ करके पढ़ना है, नहीं, पढ़ाई तो बुद्धि में है कि हमको देही अभिमानी बनना है, चलते फिरते याद में रहना है, बाबा आया हुआ है हमको पढ़ा रहा है, प्रतिष्ठे पावन बनने की सहज युक्ति बताए रहे। आगे क्या पढ़ा रहे? मुख्य पढ़ाई किस बात की है? प्रतिष्ठ से पावन बनने बरोबर। कल पहले हम राज्य सीखे थे, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाना, आत्मा ही सब एक्ट करती है, ये शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी। तो तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है, इस शरीर से हम आत्मा ये धंधा करती है क्या? कोई भी धंधा हो, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करते हैं तो करने वाला कौन? आत्मा। शरीर के थ्रू करते हैं हम, आत्मा दुख सहन करती है, सब कुछ आत्मा को ही फील होता है। कहा जाता है पुण्य आत्मा पाप आत्मा, मनुष्य बिचारे परमात्मा को न जानने के कारण कह देते हैं कि हम ही परमात्मा है। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन है तो कहेगा फलाना, फिर पूछो उनका बाप कौन, आखिरी न जानने के कारण कह देगा हम। तो ऐसे ही भगवान को भी न जानने के कारण कह देते हैं कि हम ही भगवान है। अब पतित पावन को तो बुलाते ही, किसको बुलाते हैं? ए पतित पावन आओ, ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि हे भगवान आओ आकर के हमको ज्ञान सुनाओ। इसलिए बुलाते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते। ज्ञान कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, ज्ञान तो साधन है पतित से पावन बनने का। एम ऑब्जेक्ट है हमारी पतित से पावन बनने की। तो परमात्मा बाप पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं। बरोबर पावन दुनिया थी, वहां और कोई धर्म नहीं था। अभी तो 550 करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े होने चाहिए, बाद में झाड़ वृद्धि को पाता है। तो बाबा जी से सतयुग का लक्ष्य ले देते हैं उसमें कितनी आबादी होगी? 9 लाख भी नहीं, एक्यूरेट बात जो आकर के शक्ति स्थापन करते हैं उसमें तो सिर्फ 4.5 लाख होते हैं जो रचयिता की स्टेज में होते हैं, जिनका रचयिता दुनिया में कोई होता नहीं, जो सारी दुनिया के दिव्य हैं। तो सत्युग में कितने थोड़े होने चाहिए, बाद में झाड़ वृद्धि को पाता है तो समझाना कितना सहज। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो कितनी थोड़ी प्रजा थी, कौन से लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, चित्र बाबा की बाजू में रखा रहता था और बाबा उसे 30x40 इंच के चित्र की तरफ इशारा करते थे जिसमें ऊपर लक्ष्मी नारायण और नीचे राधा कृष्ण दिए हुए। तो लक्ष्मी नारायण की इशारा और राधा कृष्ण की तरफ जो इशारा किया जाएगा उसमें फर्क तो होगा, क्योंकि दोनों चित्र अलग अलग बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऊपर है और राधा कृष्ण का चित्र नीचे है, तो चित्र में लिखा हुआ भी है रचयिता और रचना। तो पहले शब्द आया रचयिता, तो रचयिता लक्ष्मी नारायण का चित्र ऊपर होगा या रचना का चित्र ऊपर होगा, रचयिता का चित्र ऊपर होना चाहिए। तो नर से नारायण बनने वाले जो रचयिता हैं उनकी तरफ बाबा इशारा करते थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो कितनी थोड़ी प्रजा थी, चंद्रवंशी भी नहीं थे, जो बच्चे आएंगे उनके जन्म भी कम होते जाएंगे। सेकंड बर्थ में, सतयुग में, थर्ड बर्थ में जो आएंगे वो डायरेक्ट बाप के बच्चे नहीं होंगे, वो ऐसी आत्माएं होंगी जिनमें आते ही कुछ न कुछ देवान होगा परसेंटेज में। बाबा के संपन्न आत्मिक स्टेज को धारण वाले करने वाले बच्चे तो सिर्फ 4.5 लाख, 9 लाख भी कह सकते हैं, लेकिन इससे जास्ती नहीं। जो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं कोई के 80 और 82 जन्म भी हो गए ना, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, जिनके पूरे 84 जन्म होते हैं वही अच्छा पुरुषार्थ करने वाले हुए, और जिनके पूरे 84 जन्म नहीं हुए, पहले पहले जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर नहीं आते वो अच्छे पुरुषार्थी बाबा की दृष्टि में नहीं, वो है कमजोर पुरुषार्थी जो बाबा की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते छू मंतर हो जाएंगे, पढ़ाई छोड़ करके भाग जाएंगे। बाबा का इतना दो पावरफुल उनको पकड़ने की ताकत नहीं होगी, सब थोड़े सतयुग में आएंगे। ये सारा हिसाब किताब तुम्हारी बुद्धि में है, बात है ज्ञान का सागर, वही सत्य है और चैतन्य है। चैतन्य माना परिभाषा बताई मुरली ने, चैतन्य माना बोलता चलता। अगर सिर्फ बिंदु कहें तो बिंदु को चैतन्य कहेंगे, कोई आत्मा बिंदु रूपी स्टेज में है तो वो जड़वत है या चैतन्य मत है। आत्मा तो अगर शरीर धारण न करे तो मुरली ने ही बोला है आत्मा जड़वत, जैसे जड़